पूछोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
ओम शांति। सबने बोला नहीं। ओम शांति। मीठी हो बातें, चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसा व्यक्तित्व है। वो नहीं होते हैं परिचय के मोहताज। किस किस को परिचय नहीं है दीदी का? सबको परिचय है ना यहाँ दीदी के बारे में, सबको पता है, सबको परिचय है ना? कितनों को परिचय दीदी का? फिर भी इन शॉर्ट मैं सुनाती हूँ आपको। शिवानी दीदी पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। 20 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राजयोग का टीचर है। 2007 से अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से सारे विश्व को अवेकन कर रहे हैं। हैप्पीनेस अनलिमिटेड, द पावर ऑफ वन थॉट के ऐसे किताबों की रचयिता है। 2014 में वुमेन ऑफ डेकेड अवार्ड से सम्मानित है। 2017 में गुडविल एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड सेक्रेटिस्ट एसोसिएशन से सम्मानित है। 2019 में नारी शक्ति अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त किए हैं। शिवानी दीदी ने अवेकनिंग के थ्रू भगवान का ज्ञान घर घर में पहुंचाया है, सबका जीवन आसान बनाया है। सच में जो भी शिवानी दीदी को सुनता है वो अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते, अपनी लाइफ को भी समझ पाते। शिवानी दीदी को देखते हुए सच में ऐसा महसूस होता है कि भगवान की नूर हो आप। इसलिए आपका चेहरा रूहानियत की खुशबू से महकता है। करते हो भगवान को प्रत्यक्ष आप, अपने ही कर्मों से आपकी वाणी में है मधुरता, आपकी शब्दों में है सरलता। बन के खुदा का फरिश्ते आए हो आप, लाने सबके जीवन में मधुरता। ऐसी रूहानी फरिश्ता को दिल से करते हैं स्वागत, शिव की वाणी को करते हैं दिल से स्वागत स्वागत स्वागत। ओम शांति। प्यार से बोलेंगे, मीनिंग के साथ बोलेंगे और फिर फीलिंग के साथ बोलेंगे, है ना? कभी कभी हम शब्दों को बोलते हैं लेकिन कभी कभी उनका मीनिंग ही नहीं पता होता, और मेजोरिटी टाइम मीनिंग पता होता है लेकिन फीलिंग में स्थित होकर नहीं बोलते हैं। तो ओम शांति का मीनिंग क्या है? ओम शांति का मीनिंग क्या है? आपने कल से किसी को ओम शांति का मीनिंग नहीं पूछा? हाँ, कल सुबह से आप हर एक से क्या कह रहे होंगे? ओम शांति। हर एक आपसे ओम शांति कर रहा होगा तो आप रिटर्न में क्या बोल रहे हैं, है ना? रेलवे स्टेशन से लेकर हर एक जो मिलेगा वो कहता है ओम शांति। तो ओम शांति का मीनिंग है आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो ये शब्द हमने बहुत बार सुना है, और जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर आगे जाती है, मतलब जब डेथ होती है, तो लोग ओम शांति कहते हैं। अर्थात आत्मा जो अपनी जर्नी पर आगे गई वो कैसे रहनी चाहिए? पीसफुल। इसीलिए सब लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस, लिखते हैं ना RIP, रेस्ट इन पीस। लेकिन रेस्ट इन पीस करने के लिए पहले लिव इन पीस करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम स्ट्रेस में जिएंगे तो जाएंगे कैसे? अगर स्ट्रेस में जिएंगे तो तो यहाँ से जाते हुए आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो जाएगी कैसे? पीसफुली, पीसफुली जाएगी? नहीं। तो जैसा जिएंगे वैसे ही आगे जाएंगे, और जैसा आगे जाएंगे वैसा ही अगला जीवन बनेगा। आजकल बहुत बार लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे इतने स्ट्रेस्ड क्यों होते हैं, इतनी जल्दी इनको इतनी छोटी छोटी एज में स्ट्रेस क्यों हो रहा है, एंजाइटी क्यों हो रही है? आप एक बार खड़े हो गए, हाँ आपका बेटा खड़े हो जाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू? 10 years? ओके, सभी देखें, 10 साल का है, राइट? कौन है 10 साल का? कौन है 10 साल का? बोलिए, अब तो सब पक्का हो जाना चाहिए। एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन ही बचे, सारे सारी चीजें यहाँ फिट हो जाएंगी। कौन है 10 साल का? शरीर 10 साल का है। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? बॉडी 10 साल की है, और बॉडी को चलाने वाली शक्ति कितने साल की है? तो इसका मतलब वो कितने साल का है? वो 10 साल का नहीं है। कौन 10 साल का है? जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जैसे उसने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। आपकी रेड टी शर्ट कितने साल की है? कब खरीदी थी? 1 month old, 1 year old, न्यू, देखा, जस्ट बॉर्न। तो ये ड्रेस है, ये कितने साल की है? ये ड्रेस है, ये कितने साल की है? मैं। ये ड्रेस कल चेंज हो जाएगी, ये ड्रेस थोड़े साल बाद चेंज हो जाएगी, मैं इटर्नल। अब ये आत्मा 10 years से इस ड्रेस में है, अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार। अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा है या थोड़ा जल्दी जल्दी टेंशन हो जाती है, तो मम्मी पापा ने कहना है, भाई छोटा सा बच्चा है, इसको किस बात, बैठो, इसको किस बात की टेंशन है? अभी तो कोई एग्जाम भी नहीं है, किस बात की टेंशन हो रही है? उसने टेंशन कैसे क्रिएट करनी है वो सीखा भी नहीं है, सिखाया भी किसी ने नहीं है, लेकिन अपने आप होती है। कहते पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है, क्यों टेंशन हो रही है, कहां से सीखा टेंशन होना, कहां से सीखा? अभी तो किसी ने सिखाया नहीं, तो कहां से सीखा? किसको टेंशन हो रही है? 10 साल के बच्चे को टेंशन नहीं हो रही है। किसको टेंशन हो रही है? आत्मा को टेंशन हो रही है। आत्मा 10 साल का बच्चा नहीं है, शरीर 10 साल का बच्चा है। शरीर की एज चेंज होती जाएगी, बॉडी की हाइट बढ़ती जाएगी। That's all to do with the body. That is not to do with the age of the person. ये difference clear हो गया कल से? किस किस को clear हो गया difference? ये बच्चा छोटा सा था, womb में था, body develop हुई, धीरे धीरे बड़ा होता गया, अभी और बड़ा होता जाएगा। लेकिन age of the soul है, and संस्कार किसके हैं? Body के नहीं हैं। संस्कार किसके हैं? आत्मा के हैं। तो जब हम जिएंगे शांति से, तब हम जाएंगे शांति से, और फिर जहां आएंगे तो आएंगे भी शांति से। नहीं तो अगर हम अभी स्ट्रेस्ड हैं, एजिटेटेड हैं, डर में हैं, चिंता में हैं, तो ऐसे ही हम इस कॉस्ट्यूम को छोड़ेंगे, और ऐसे ही आत्मा वोम्ब में जाएगी। कुछ महीनों के बाद बेबी बॉर्न, कुछ साल के बाद कहेंगे 3 साल का बच्चा गुस्सा क्यों आ रहा है इसको, 5 साल का बच्चा है इसको टेंशन क्यों हो रही है, 6 साल का बच्चा है इसको डर क्यों लग रहा है। सो देन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं जब हम उसको बॉडी नहीं, लेकिन बॉडी को यूज करने वाली शक्ति आत्मा को देखते हैं। तो 2 मंत्र अब तक पक्के हो जाने चाहिए। एक मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक लग रहा है बोलने में, मैं आत्मा हूं? अजीब सा तो नहीं लग रहा, मैं आत्मा हूं? नहीं, कंफर्टेबल? 3 दिन और तक बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा।
डिफरेंट वोकैबुलरी है ना, डिफरेंट वोकैबुलरी है, लेकिन इट्स द ट्रूथ. लेकिन हम इसको जी नहीं रहे थे, हम सिर्फ इसको सुनते थे. आत्मा शब्द हम सुनते थे, जी नहीं रहे थे. हम जीते हुए कैसे थे, मैं कौन हूं? सुबह सुबह शीशे में देखते थे और कहते थे मैं आज कैसी दिख रही हूं. क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? क्या आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? आप सोचो घर जाओगे तो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बताने के लिए सबको. आपको पता है हम अपने आप को शीशे में नहीं देख सकते हैं. वो कहेंगे कहां से आए, क्या करके आए हो, ये देखो मैं आपको आपको शीशे में दिखाता हूं. एवरी डे वी वर लुकिंग इन टू द मिरर एंड वी वर सेइंग हाउ एम आई लुकिंग टूडे. सो चेंज द लाइन. शीशे में हम क्या देखते हुए क्या कहेंगे, क्या होगी अब लाइन? वोकैबुलरी सारी चेंज हो जानी चाहिए परसों तक. शीशे में देखते हुए क्या कहेंगे? शीशे में तो देखना है, लेकिन देखते हुए क्या कहेंगे? हाँ, मेरा शरीर आज कैसा दिख रहा है. फिर ऐसे 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 ठीक भी करेंगे तो याद होगा किसको ठीक कर रहे हैं, शरीर को ठीक कर रहे हैं. क्योंकि इसको मैं समझकर इसको ठीक करते रहे एंड सेड ओ आई एम लुकिंग परफेक्ट, आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, और वो आए तो कहां का कहां जा रहा था, और हम सिर्फ शरीर को ही ठीक करते रह गए. अब आय को कहां देखेंगे? हाउ एम आई लुकिंग टूडे, ये कहां दिखाई देगा? फिर ये कहां दिखाई देगा, हाउ एम आई लुकिंग टूडे? इसके लिए कौन सा शीशा है? फिर कौन से शीशे में दिखाई देगा कि ये साफ है, बेदाग है, या कोई दाग लगा हुआ है इसके ऊपर? इसके ऊपर दाग दिखाई देता है, इसके ऊपर दाग दिखाई देता है. मुझे कैसे दिखाई देगा कि मुझ पर तो कोई दाग नहीं लगा आज सारा दिन में. सारा दिन में दाग लगते हैं या नहीं लगते हैं? सारा दिन में दाग लगते हैं नहीं लगते हैं? कौन से दाग लगते हैं? किस चीज को आप दाग कहेंगे? ये दाग लगा आज मेरे ऊपर, किस चीज को दाग कहेंगे? स्टेन. अब ये आपने बताना है किस चीज को दाग कहेंगे, ये दाग लगा है मुझ पर. हां जी, अच्छा, गुस्सा एक दाग है. कौन कौन मानता है गुस्सा एक दाग है? वेरी गुड. एक लिस्ट ऑफ दाग बना लेते हैं आज, क्योंकि परसों जाने से पहले कैसे जाना है, कैसे जाना है? फ्लॉलेस, बेदाग. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेदाग जाकर फिर बेदाग रहना है. बेदाग जाना तो इजी है. कल किसी ने गुस्सा तो नहीं किया सारा दिन में, तो बेदाग हट गया. तो गुस्सा एक दाग है. और कौन सा दाग है? पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि कौन से मेरे संस्कार दाग है. ये व्हाइट कलर है, इस कैंपस में सबने व्हाइट पहना हुआ है, लेकिन सारा दिन में हर एक का रोल अलग अलग है. कोई किचन में है, कोई गार्डन में है, कोई पीछे गाड़ी रिपेयर कर रहा है. मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आराम से स्टेज पर बैठी हूं. तो बाय द एंड ऑफ द डे मेरा व्हाइट व्हाइट ही रह जाता है, क्योंकि कुछ काम ही उस तरह से किया नहीं है जिस पर कोई दाग लगे. लेकिन जो किचन में सारा दिन आज सेवा करेंगे तो शाम तक उनकी ड्रेस कैसी हो जाएगी? जो गार्डन में सारा दिन मिट्टी उठा रहे हैं, खोद रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, शाम तक उनकी ड्रेस कैसी हो जाएगी? अलग हो जाएगी. जो कार रिपेयर कर रहे हैं उनकी ड्रेस पे सारा दिन में क्या लग जाएगा? अब जब हम सब लोग एक दूसरे को शाम को मिलेंगे तो सबके वाइट थोड़े से बदले हुए होंगे, लेकिन जो दाग लगे होंगे वो हरेक पे अलग अलग लगे होंगे, राइट? अब हरेक अपने दाग को तो देखता नहीं है, दूसरे दाग को देखता है और कहता है ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं. वो हमें देखते हैं, कहते हैं आप ऐसे कैसे हो सकते हो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के किसको देख रहे हैं? दाग को देख रहे हैं. राजयोग सबसे पहली चीज जो हमें सिखाता है, जो आपने कल सुबह के सेशन में सबसे पहले चीज सीखी होगी, कि ये दाग हमारी नेचर नहीं है. ये दाग हमारी नेचर नहीं है, मतलब इसके ऊपर लगे हुए दाग इसका कलर नहीं है. इसका कलर क्या है? इसका कलर क्या है? व्हाइट है. तो मुझ आत्मा की नेचर क्या है? मुझ आत्मा की नेचर क्या है, क्या है? कल आपने सुना आपके 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं, वो कभी भूलने नहीं हैं, कभी भूलने नहीं हैं। और आज से उन 7 के अलावा किसी भी दाग को अपनी नेचर नहीं बोल देना। जैसे सपोज मैं गुस्सा करूं तो कोई कहे क्यों इतना गुस्सा करते हो, तो कहते क्या करे, ये तो मेरी, क्या बोल देते हैं, ये तो मेरी नेचर है। किसी को थोड़ा सा कुछ कह दो तो उनका चेहरा ऐसे हो जाता है। कोई कहता क्या छोटी छोटी बात पे मुंह इतना मुरझा लिया, कहते क्या करूं, ये तो मेरी नेचर है। फर्स्ट होमवर्क, कोई नेगेटिव इमोशन को मेरा नहीं कहना, कोई नेगेटिव इमोशन को मेरा नहीं कहना। परमात्मा सिखाते हैं किसी को भी अगर मेरा मेरा कहोगे तो क्या हो जाएगा, किसी को प्यार से बोलो आप तो मेरे हो, हाँ, तो जाने वाला भी क्या कर लेगा, बैठ जाएगा, क्योंकि हमने उसको क्या कहा, आप मेरे हो। नेवर कॉल अ नेगेटिव इमोशन मेरा, ऑलवेज रिमेंबर वो क्या है, ऊपर से लगा हुआ दाग है। तो दाग की लिस्ट निकाल ले फटाफट से, गुस्सा और अब अपने ही दाग सुना दो ना, अपने ही सुना लो। हम सबके पास कितने सारे दाग हैं, दाग तो पता होना चाहिए ताकि ये भी तो ध्यान रखेंगे, नया नहीं लगना चाहिए, पुराने वाले साफ करने हैं, नया नहीं लगना चाहिए। तो गुस्सा एक दाग है, और कोई चीज एक दाग है, ईगो एक दाग है, ईगो तो दागों का दाग है, उसी में सारे दाग आ जाते हैं। और क्या है दाग, जेलेसी एक दाग है, यस, और हर्ट भी एक दाग है, और फियर एक दाग है, यस, और कोई दाग, हेट्रेड एक दाग है, हाँ, और कंपैरिजन एक दाग है। आप सबको वो डायरी मिली ना कल गिफ्ट, फर्स्ट पेज पे नहीं, लास्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे हम अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, लास्ट पेज पे आज आप अपने अपने दाग लिखना, किसी को दिखाना नहीं है, अभी नहीं, जब भी कोई दाग याद आएगा लास्ट पेज पे जाके लिख देना। जैसे ही देखो अगर इस ड्रेस पे दाग लगा हो और मुझे पता ही ना हो तो आई कैन लिव विद दैट दाग फॉर एवर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो दाग है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है ये दाग है, ऑटोमेटिकली मेरा अटेंशन किधर जाएगा, उसको हटाने पर। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं वो दाग है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, मैं उसी के साथ जीऊंगी। और फिर जब मुझे दिखाई देता है कि सबके ऊपर दाग है, और फिर सब लोग बोलते हैं ये दाग तो नेचुरल है, वेरी गुड, और सबसे ज्यादा ये किसने बोला है, समाज को, सबसे ज्यादा समाज को किसने बोला, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, एंगर तो नॉर्मल है, फियर तो नॉर्मल है, ये किसने बोला समाज को, किसने सिखाया, हाथ उठाओ, किसने सिखाया, डॉक्टर लोगों ने सिखाया, अच्छा, और फिर इसको चेंज भी कौन ही करेगा, डॉक्टर ही करेंगे, इसीलिए तो आपको खास बुलाया जाता है, इसीलिए आपको स्पेशली बुलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साइंटिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज साइंस को एक्सेप्ट करता है कि जो कह रहे हैं वो सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके बोल रहे होंगे, लेकिन ये वाली बात हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं बोली है, हमने सुनी सुनाई पढ़ी और बोल दी। किस किस को लगता है स्ट्रेस नॉर्मल है, आप कंफ्यूज्ड, एक दूसरे के हाथ को नहीं देखना बिल्कुल भी, हम सारा दिन कहते हैं नहीं स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस नॉर्मल है, जितनी बार उसको नॉर्मल कहेंगे वो क्या होता जाएगा, क्या स्ट्रेस नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे पता चलेगा, कौन सा इमोशन नॉर्मल है, हाउ टू डिसाइड, क्योंकि कोई कहता है कुछ नॉर्मल तो कोई कहता है कुछ नॉर्मल, बाहर कहते हैं स्ट्रेस नॉर्मल, यहां आओ तो कहते हैं पीस नॉर्मल, तो हमें कैसे पता राइट कौन सा है, जहां जाएंगे हम ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, कि नॉर्मल कौन सा है. किताबों में लिखा हुआ है स्ट्रेस नॉर्मल. और यहां आए और सबने कहा ओम शांति, आई एम पीस, दिस इज नॉर्मल. तो ये तो बिल्कुल दो क्या हो गए, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स. हम दोनों को राइट नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों में से एक नॉर्मल होगा और दूसरा. तो दोनों में से कौन सा नॉर्मल? अब तो आपने डिसाइड करना है, स्ट्रेस नॉर्मल या पीस नॉर्मल. स्ट्रेस नॉर्मल या पीस नॉर्मल कैसे डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? क्योंकि यहां आने से पहले कह रहे थे स्ट्रेस नॉर्मल एंड आई वांट पीस. यही कह रही है ना दुनिया, स्ट्रेस नॉर्मल, शांति चाहिए है. हम कह रहे हैं शांति नॉर्मल. कैसे डिसाइड करें दोनों में से कौन सा राइट है? एंड ये डॉक्टर सबसे अच्छे से बता सकते हैं कैसे नॉर्मल, कैसे नॉर्मल. जो इमोशन मैं यहां क्रिएट करूंगी उसका असर मेरी बॉडी पर पड़ेगा. यस, अब आपने आंसर देना है, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में. जो मैंने इमोशन यहां क्रिएट की वो मेरी असर बॉडी पे पड़ेगा, राइट? अब इफ आई क्रिएट पीस हियर उसका असर भी बॉडी पर पड़ेगा. आपको कल से थोड़ा सा असर आपकी बॉडी पे दिखाई देना शुरू हो गया होगा. किस किस को अपनी बॉडी पे थोड़ा सा असर दिखाई देना शुरू हो रहा है? सी अभी तो कुछ मेडिटेशन सीखा भी नहीं है, अभी तो किया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ वाइब्रेशन में आए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है. इसी तरह मैं यहां स्ट्रेस क्रिएट करूंगी उसका असर मेरी बॉडी पे दिखाई देगा. इफ आई कम टू यू विद स्ट्रेस इन माई माइंड, मेरे मन में स्ट्रेस है, आप मेरी बॉडी में कौन सा पैरामीटर चेक करके बता सकते हैं कि समथिंग इज नॉट राइट? क्या चेक करेंगे आप मेरा? पल्स रेट चेक करेंगे. और भी कुछ चेक करना है? और जैसे ही आपने वो चेक करना है आपको वो नॉर्मल से हटा हुआ मिलेगा. और जैसे ही वो नॉर्मल से हटा हुआ मिलेगा आप मुझे कहने वाले हैं थोड़ा सा काम डाउन. सो व्हाट डज दैट मीन? कि मैंने कोई एक ऐसी इमोशन क्रिएट की थी जिससे मेरे बॉडी का पैरामीटर नॉर्मल से हट गया. अगर उस इमोशन से मेरा बॉडी का पैरामीटर नॉर्मल से हट गया तो वो इमोशन नॉर्मल कैसे हो सकती है फिर? तो आज से डेफिनेशन चेंज. इट इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है. आप सब शरीर की बीमारी का इलाज करते हैं, आप में से कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज का इलाज करते होंगे, लेकिन एक चीज है जिसका कोई डॉक्टर नहीं है और वो है इमोशनल हेल्थ. सो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डॉक्टर्स. इमोशनल हेल्थ, नो डॉक्टर. इमोशनल हेल्थ का डॉक्टर कौन बनेगा? हम खुद. और जब हम खुद के इमोशनल हेल्थ के डॉक्टर बन जाएंगे आपको पता है आप अपने पेशेंट्स का कितना अलग तरह से इलाज कर सकेंगे और आप उनको उनकी इमोशनल हेल्थ कितने अच्छे से समझा सकेंगे. क्योंकि अगर इमोशनल हेल्थ ठीक ना हुई तो फिर फिजिकल हेल्थ को ठीक करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल है. अच्छा, दोनों हाथ आगे करिए. अब एक एक इमोशन सुनाऊंगी, आप दोनों में से एक हाथ पर उसको रखिएगा, ठीक है? राइट हैंड नॉर्मल, राइट हैंड नॉर्मल एंड लेफ्ट हैंड दिस इज इमोशनल. दिस इज मतलब इमोशनल डिस्कम्फर्ट. दिस इज मतलब डिस्कम्फर्ट हो गया, मेरा माइंड ईज की पोजिशन से शिफ्ट हो गया. दिस इज मतलब डिस्कम्फर्ट, ठीक है? एक दूसरे के हाथ नहीं देखने बिल्कुल भी. ये वाला कौन से हाथ उठा रहा है? बिल्कुल नहीं. हर एक का आंसर राइट है. स्पिरिचुअलिटी में हर एक आंसर राइट होता है क्योंकि हर एक आंसर मेरा एक्सपीरियंस होता है. कल मैं अपना आंसर चेंज कर सकती हूँ, वो भी राइट होगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा. तो एक दूसरे के हाथ नहीं देखने हैं, सिर्फ खुद पर फोकस करना है और जिस हाथ पर आप रखोगे उस इमोशन को उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना तो पता चलेगा कि आपने कौन से वाले पे रखा, ठीक है? स्ट्रेस, एंगर, पेशेंस, कंपैरिजन, हैप्पीनेस, कंपटीशन, थोड़ा देख ऊपर करना, देखना मैंने कौन सा वाला हाथ ऊपर किया, कंपटीशन में कौन सा वाला हाथ ऊपर किया आपने, आपने लेफ्ट वाला हाथ कंपटीशन में ऊपर किया, अच्छा ओके। जेलेसी, अच्छा और ऊपर चला गया थोड़ा सा, वेरी गुड। काम एंड स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, लव, हर्ट, ये दोनों नहीं जैसे जाएंगे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कौन सा कहां जा रहा है। हर्ट, अटैचमेंट, कौन सा वाला है अटैचमेंट, लेफ्ट पे रखा है राइट पे रखा है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी नम्रता राइट पे रखे है। फियर लेफ्ट पे रखा है ओके। वरी, वरी किस पे रखा आपने, वरी लेफ्ट पे रखा, वरी नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, आपने वरी लेफ्ट पे रखा, वरी नहीं करनी फिर आज से, क्या करना केयर, वो कौन से हाथ पे रखेंगे, इजी है, आप ये अपने हर पेशेंट को बता देंगे जाने के बाद वापस, आप ये बता देंगे फिर आपके पास पेशेंट कम हो जाएंगे उसके बाद। अगर उन्होंने ये सीख लिया ना कि कौन सा वाला नॉर्मल है कौन सा नहीं, और उन्होंने अगर करना शुरू कर दिया तो शरीर की बीमारियां तो क्या होने शुरू हो जाएंगे, घटनी शुरू होंगी या नहीं घटनी शुरू होंगी, आप चाहते हैं कि घटे, जेन्युइनली कौन चाहता है कि बीमारियां घटे समाज में, अच्छा क्या आप चाहते हैं कि समाज से बीमारियां खत्म हो जाएं, आप क्या करेंगे फिर उसके बाद, आप क्या करेंगे, हाँ हम सेवा करेंगे, हाँ बहुत प्योर इंटेंशन रखना चाहिए, बहुत प्योर इंटेंशन रखो, क्योंकि हमारा इंटेंशन हमारा कर्म होता है और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। तो भले ये हमारी आमदनी है ये हमारा काम है, लेकिन इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि कोई मेरे पास आज ना आए, कर सकते हो, करके देखो, अगर ऐसा इंटेंशन कर दिया ना तो इतने लोग आएंगे कि आप दिन और रात भी करेंगे तो काम खत्म नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि इंटेंशन सेल्फलेस बनता जाएगा, निस्वार्थ। सेल्फिश कौन से हाथ पर आएगा, लेफ्ट, और सेल्फलेस कौन से हाथ पर आएगा, राइट, बस यही, ये सबको आंसर पता है, वी डोंट हैव टू डिस्कस दिस, लेकिन हम आज ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में हमने उनको ऑपोजिट हाथों पे रखा हुआ है, क्योंकि हमने कहना शुरू किया शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, चाहिए मतलब वो मेरे नेचुरल अभी नहीं है। तो आज से ये वाली डेफिनेशन क्लियर होगी हमेशा, और नहीं भी हो तो एक सेकंड ऐसे ऐसे करना, याद आ जाएगा कौन से हाथ पे रखा था, ठीक है। कभी भी इसमें गलती नहीं करना, और अपने बच्चों को भी जाकर ये सिखा देना कि कौन सा वाला नॉर्मल है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सिखाना कि कौन सा वाला नॉर्मल है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस भी नहीं, वो बोलते आई एम डिप्रेस्ड, वो बोलते एंग्जाइटी हो रही है, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंड दे आर कॉलिंग दैट नॉर्मल, क्योंकि अब उनकी मेजोरिटी में वो हो रहा है तो वो उसको नॉर्मल बोलना शुरू कर देते हैं। एंड हम सबकी जिम्मेवारी है, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है, इट इज आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील द सोसाइटी, है नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शरीर का इलाज करना नहीं है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना। और एक हेल्दी सोसाइटी कैसे क्रिएट होगी, सबसे पहले उंगली किस पे रखनी है, सबसे पहले किसको हेल्दी बनाना है, ज्यादातर डॉक्टर्स बहुत प्यार से कहते हैं, कहते ओ डॉक्टर इज द मोस्ट, इसलिए ये तीन दिन में लास्ट पेज पे अपने दाग लिखने, सेकेंड लास्ट पेज पे अपनी पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन बनाते जाना है, बनाएंगे अपनी प्रिस्क्रिप्शन पूरी अपनी लाइफस्टाइल, मंडे को ट्यूसडे को यहां से जाने से पहले आपकी लाइफस्टाइल की प्रिस्क्रिप्शन वहां सेट होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि आप हर एक को कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपके पास कोई जर्नलिस्ट आएगा पूछेगा, कहते हैं इतना सब कुछ हो रहा है क्यों ऐसे हो रहा है, कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करो। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी कैसे जाती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की भाग दौड़ की जिंदगी में क्या हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और जब आप उसको जिएंगे तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, और जब आप एक्सपेरिमेंट करके वो शब्द बोलेंगे तो सामने वाला उसको तुरंत स्वीकार करेगा। अब सबका ध्यान रखते हुए हम कभी कभी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, और इसीलिए हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस, तो क्या लाइन है, डॉक्टर है तो स्ट्रेस, तो बोलिए लाइन, बोलिए डॉक्टर है तो। अब आप बोल भी नहीं रहे, देखो डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही। अच्छा पहली बात इसका लॉजिक बताइए कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस क्यों होगा, ऐसा क्या कनेक्शन है डॉक्टर और स्ट्रेस के बीच। और जब आपने शुरू किया था स्टडी,
ट्रेनिंग इज स्ट्रेटेजिक,
कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस ही, और फिर आपने फिर भी चूज कर ली ये वाली प्रोफेशन, नहीं।
एंड इट इंपैक्ट्स योर बॉटम लाइन, बिजनेसेस नीड टू ट्रेन देयर कस्टमर्स।
डॉक्टर मतलब वो जिनको बहुत दुआएं मिलती हैं, और आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया था, आपने कहा था हमें सबकी क्या करनी है, सेवा करनी है, आपने इसलिए थोड़ी चूज किया था कि हमने सारी जीवन स्ट्रेस में रहना है और इतने स्ट्रेस में रहना है कि हमें देखकर कई बार हमारे बच्चे कह देते मुझे नहीं डॉक्टर बनना। अगर हमें देखकर कोई कह दे मुझे ये नहीं बनना तो जरूर मुझसे कुछ गलती हो रही है। हमारी जीवन ऐसी होनी चाहिए जो हमें देखकर हर एक क्या कहे, हमारी जीवन, हमारा चेहरा, हमारे मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो हमें देखकर हर एक क्या कहे, मुझे भी ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसी जीवन होनी चाहिए ना। सो वी आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ, वी आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। हमें देखकर लोगों ने अपना भाग्य डिसाइड करना है। तो आज हमें चेक करना है कि सारा दिन में कौन सी ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमने कहना शुरू कर दिया हम डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही। हम डॉक्टर हैं तो हम दुआओं से पलते हैं। आपको पता है आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? आपने कभी हिसाब लगाया आपको कितनी दुआएं मिलती हैं हर रोज, मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? क्योंकि आजकल वो भी आपकी शिकायत है, कहते आजकल पेशेंट देखो कैसे हो गए हैं। कभी भी एक दो पेशेंट अगर कुछ गलत बोल भी दें, गलत व्यवहार कर भी दें, तो ध्यान उस तरफ नहीं, ध्यान उस हजारों पर जाना चाहिए जो दिन रात आपको दुआएं देते रहते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं नहीं देते हैं? तो किस किस को लगता है मुझे ढेर दुआएं मिलती हैं रोज, अच्छे से आते तो अच्छा, कितनी मिलती हैं? इतनी 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 कितनी मिलती हैं? हाथ करके दिखाओ कितनी मिलती हैं रोज, कितनी दुआएं मिलती हैं? इतनी 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 कितनी इतनी दुआएं मिलती हैं? पैसे कितने मिलते हैं रोज? पैसे इतने 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 या दुआएं इतनी इतनी, कौन सी चीज ज्यादा मिलती है रोज? कौन सी, आई एम रिच इन व्हाट, वेल्थ और ब्लेसिंग्स? इतना ठंडा बोलोगे तो आपको भी सुनाई नहीं देगा, बाकी सबको कैसे सुनाई देगा? मुझे क्या मिल रहा है हर रोज? हमने ध्यान नहीं दिया ना लेकिन उसकी तरफ सारा दिन में। जो इसको इतनी दुआएं रोज मिलती रहें, स्ट्रेस वर्ड तो उनकी वोकैबुलरी का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। इट्स लाइक सेइंग इतना कमाते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर हम इतना कमाते हैं तो हमारे पास तो हर चीज खरीदने के पैसे होने चाहिए। इसी तरह अगर हम इतनी दुआएं कमाते हैं तो हम तो जीवन की किसी भी सिचुएशन को बहुत स्टेबिलिटी से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में क्या है, इतनी सारी दुआएं। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि डॉक्टर मतलब वो जो इतनी दुआएं कमाते हैं, तो किसी और प्रोफेशन में स्ट्रेस हो तो हो लेकिन डॉक्टर के प्रोफेशन में तो कभी नहीं हो सकता। रियलिटी तो ये है क्योंकि दुआओं से पलते हैं ना, पलते हैं ना दुआओं से। तो दुआएं एक एनर्जी है, एनर्जी किसको स्ट्रेंथ देगी? यहां पैसे क्या है, पैसे एक करेंसी है, पैसे क्या देता है? समान, धन क्या दे रहा है? समान, दुआएं क्या दे रहा है? सुकून. ज्यादा क्या कमा रहे हैं? आप अभी भी श्योर नहीं हो आप ज्यादा क्या कमा रहे हैं. ज्यादा क्या कमा रहे हैं? दुआएं. तो जो दुआएं सारा दिन कमाएं उनको याद रखना चाहिए कि सोल पावर तो क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है. फिर मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है? सिर्फ एक छोटे से कारण से, और वो छोटा सा कारण ये है कि मैं सारा दिन लोगों से मिल रही हूं हु आर इन पेन, नॉट ओनली इन डिजीज, इन पेन. हमें क्या लगा, हमें मेडिकल स्कूल में क्या सिखाया गया? आपके पास जो आएगा वो बीमार होगा, जो बीमार होगा आपने उसका इलाज करना, इलाज करके ठीक करके भर भेज देना. तो आप हर एक को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि आपको याद रहता है कि वो बीमार हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए आपने हाथ धोए बिना नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए आपने उनको हाथ लगाने के बाद हाथ जरूर धोना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने मास्क जरूर पहनना है, ग्लव्स, ये आप कभी नहीं भूले. इट इज इनग्रेन्ड इन द सबकॉन्शियस. कितना भी बड़ा क्राइसिस हो, सामने वाला बिल्कुल डेथ के नजदीक पहुंच रहा है और आपने उसके साथ कुछ करना है, क्या आप अपना वो सब पहनना भूल जाते हैं कभी? आप कभी कहते हैं टाइम नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही हाथ लगा दिया? नहीं. इतना सेल्फ प्रोटेक्शन इनग्रेन्ड है सबकॉन्शियस के अंदर. क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन सिर्फ हमारे पास नहीं आएगी, फिर वो हमारे से किसी और के पास चली जाएगी. तो आप गलती से भी नहीं, आधी रात को भी नहीं, सपने में भी आप किसी को हाथ नहीं लगाएंगे विदाउट प्रोटेक्शन. दिस इज फिजिकल केयर. लेकिन सारा दिन आप जिनसे मिल रहे हैं वो सिर्फ शरीर से बीमार नहीं है, वो मन से दुखी है, मन से परेशान है. पहले ही शायद थोड़ा परेशान थे और जब उनको पता चल गया कि उनको बीमारी है तो उनकी मन की स्थिति किधर गई? ऊपर नीचे. तो अपनी वाइब्रेशन को चेक करो 10 से लेके 100 तक. 100 मतलब सोल पावर परफेक्ट, 10 मतलब पावर थोड़ी सी घटी हुई है, जिसको हम कहेंगे इमोशनल हेल्थ या जिसको हम कहेंगे इमोशनल कोशेंट. ईक्यू है, आज दुनिया बात करती है. आपने कभी अपना ईक्यू टेस्ट करवाया? अभी करें? चलो आंख बंद करो जरा, अपना करना है. किसी और को मत देखना उसमें, अरे इसका इतना इतना नहीं, सिर्फ अपना देखना है. छोटे छोटे क्राइटेरिया होंगे, बहुत डिटैच्ड होके साक्षी होकर अपने को ग्रेडिंग देते रहना 1 to 10 के बीच. 10 इज हाईएस्ट परफेक्शन एंड 1 इज लोएस्ट. इसके बीच में अपने आप को ग्रेडिंग देना. जब भी कोई सिचुएशन आती है, छोटी बड़ी जो भी सिचुएशन आती है, डू आई रिएक्ट टू द सिचुएशन? और मेरा रिएक्शन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. सिचुएशन अगर मुश्किल तो मेरा रिएक्शन थोड़ा ज्यादा, सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल तो मेरा रिएक्शन थोड़ा और ज्यादा. सो जितना ज्यादा आई एम डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन उतना मेरा ईक्यू लोअर है. इमोशनल डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है, थोड़ा सा कोई गलती करे मेरा रिएक्शन कितना है. तो चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो किसी पर्सन का बिहेवियर है, और अगर सिचुएशन का मुझ पर कोई असर नहीं होता एंड आई जस्ट रिस्पॉन्ड विथ स्टेबिलिटी पीसफुली, देन माय ईक्यू इज हायर. तो बहुत डिटैच्ड होके, ये किसी और के लिए नहीं है, ना हमने ये किसी और को बताना है, ये हमारे अपने लिए है, क्योंकि हमें अपने आप को 10 तक लेकर जाना है. लेकिन स्कैन करेंगे, चेक करेंगे तो ही तो बढ़ाएंगे. तो अपने आप को इस पर क्राइटेरिया पर एक ग्रेडिंग दे दो. दूसरा, अपने आप को कितना लोगों के साथ कंपेयर कर लेते हैं, किस लेवल का कंपैरिजन पर जाते हैं. छोटी छोटी चीजों में भी कंपेयर करते हैं. अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को पसंद करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, या खुद की तुलना दूसरों से करते हैं. तो जितना आपको लगता है कंपैरिजन ज्यादा है उतना हमारा ग्रेड लोअर है, तो अपने आप को देना दे, साक्षी होकर बिल्कुल। तीसरा, कुछ बात हो गई वो मेरे मन पर कितनी देर तक रहती है, हाउ लॉन्ग डज समथिंग स्टे ऑन माई माइंड। फॉरगिव करना और बातों को खत्म करना मेरे लिए कितना आसान या मुश्किल है, तो जितना मुश्किल है उतना लोअर पे जाएंगे। तो तीन क्राइटेरिया हमने अभी तक किए, इमोशनल डिपेंडेंस कितनी है सिचुएशंस पर, दूसरा खुद का कंपैरिजन हम कितना करते हैं, तीसरा हम बातों को खत्म कितनी जल्दी कर सकते हैं, लोगों को फॉरगिव कितना आसानी से कर सकते हैं, एंड लास्ट लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कहते हैं वो मुझ पर कितना असर करते हैं। मतलब मेरे अंदर सारा दिन लोगों को खुश करने का संस्कार कितना ज्यादा है, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में कुछ फैला दिया, कितना असर पड़ता है मेरे पर इस चीज का। जितना ज्यादा असर पड़ता है उतना लोअर ग्रेड। तो चार क्राइटेरिया हो गए, चारों का एवरेज निकाल के अपनी एक ईक्यू की वैल्यू दे दो। अब सभी आंखें बंद करो, बिल्कुल भी किसी ने नहीं देखना। अब यह 30 सेकेंड्स के लिए सबकी आंखें बंद होनी चाहिए और अब आपको कोई नहीं देख रहा है, कैमरा भी नहीं ऑडियंस की तरफ करना, कोई आपको नहीं देख रहा है। अब आप हाथ उठाओ, 10, जो जो आपने ग्रेडिंग दी होगी उस पे हाथ उठाना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। अब कौन कौन 10 पे जाना चाहता है, वेरी गुड। अब आगे खोल लो, राजयोग हम इसीलिए सीखते हैं। कई बार लोग कहते हैं इतनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स है, डिफरेंट क्या है? राजयोग मेडिटेशन मतलब सोल पावर को 10 पर लेकर जाना, मतलब इमोशनल फिटनेस को 10 पर लेकर जाना, ईक्यू को हाईएस्ट पर लेकर जाना। आईक्यू हम सबकी अलग अलग हो सकती है, थोड़ा थोड़ा हम अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हरेक की आईक्यू एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन ईक्यू हर एक की हाईएस्ट हो सकती है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन व्हेन वी कैन गेट इट डन। तो राजयोग अर्थात हम अपने ईक्यू को हाईएस्ट पर लेकर जाएं, जिसको परमात्मा कहते हैं, मनुष्य से फरिश्ता बन जाएं। फरिश्ता कैसे होता है? लाइट, लाइट ऑलवेज हैप्पी और सबको देने वाला। जितना हमारी ईक्यू लो होगी हमारी देने की कैपेसिटी कम होगी। देना मतलब फिजिकली हम दे सकते हैं, इमोशनली हमारे पास देने की कैपेसिटी कम होगी क्योंकि हमारे सारा दिन चाहिए होगा। इस इक्वेशन को फिट करिएगा, अगर मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ कम है मतलब सोल पावर कम है, मुझे चाहिए कि यहां सब कुछ ठीक रहना चाहिए तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरी डिपेंडेंस ज्यादा है। क्या हमारे मन की स्थिति सिचुएशंस पर डिपेंडेंट होती है? क्या हमारी मन की स्थिति सिचुएशंस पर डिपेंडेंट होती है? किस किस को लगता है होती है? होती है। हमारे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हमारी मन की स्थिति सिचुएशंस पर डिपेंडेंट हो जाती है तो हमारे थॉट्स किस बेसिस पर क्रिएट हो जाते हैं? सिचुएशन पर। नाउ दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी रिस्की। इमोशनल डिपेंडेंस इतनी रिस्की क्यों हो जाती है? क्योंकि फिर मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये मैं क्रिएट कर रही हूं, मैं ये कहती हूं ये किसकी वजह से चल रही है। बचपन से हमें सिखाया था तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे ना तो हम सब बहुत खुश हो जाएंगे, तो मतलब हैप्पीनेस किस पर डिपेंडेंट कर दी थी हमने? हैप्पीनेस हमने किस पर डिपेंडेंट करी, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने उस दिन। हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमने उसको सिखाया तुम्हारे मार्क्स हमारी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट हैं और तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी खुशी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर मार्क्स से खुशी आ जाती तो जो हमेशा फर्स्ट आते हैं वो तो बहुत हैप्पी होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऐसा होता है क्या? लेकिन नहीं, सच अ बिग मिथ हमने क्रिएट किया है। अब क्योंकि हमने उनको इतना इंग्रेंड कर दिया, इतना इंग्रेंड कर दिया कि तुम्हारे मार्क्स पर हमारी खुशी, तुम्हारी परफॉर्मेंस पर हमारी खुशी, आज हम जितने भी स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ पर गिव अप करता हुआ देख रहे हैं, वो अपनी चिट्ठी में क्या लिख कर जा रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को सॉरी लिख कर जा रहे हैं कि सॉरी आपने जो मुझसे एक्सपेक्ट किया था आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दैट। आपको लगता है वो पेरेंट को उसके बाद कुछ भी और चाहिए था? कितनी बड़ी गलती की वो प्रोग्रामिंग करके उनकी, कितनी बड़ी गलती की। तो यहां से जब वापस जाएंगे ना, इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर देना, बच्चे की मार्कशीट देखकर अपने चेहरे की मुस्कुराहट का साइज चेंज नहीं करना होता है। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? उसके परफॉर्मेंस और आगे उसके प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, खुशी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खुशी कैसी रहनी है? हमेशा ईक्यू कहां रखनी है? 10। ईक्यू 10 मतलब मेरी हैप्पीनेस किस पर डिपेंडेंट है? ईक्यू 10 मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी फिनिश्ड। ईक्यू 10 मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट। तो हमारी थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? मैं। से इट। मेरी थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? आई। बोलिए आई। आई हमेशा या आई कभी कभी? आई हमेशा या आई कभी कभी? दो आंसर आए। आए हमेशा या आए कभी कभी? हमेशा, राइट? इसका मतलब कौन सी वोकैबुलरी और फिनिश हो गया? आज सारी वोकैबुलरीज चेक करनी है। आज से हम ये नहीं कह सकते ये हुआ ना इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ, ये हुआ इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ इज इमोशनल डिपेंडेंस ऑन दैट सिचुएशन। उसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे बुरा लगा, डिपेंडेंट। बच्चे का एग्जाम है ना इसलिए मुझे चिंता है, डिपेंडेंट। वी आर नॉट इमोशनली डिपेंडेंट, दैट इज इमोशनल वीकनेस। इमोशनल हेल्थ मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस। क्या ये हो सकता है कि सिचुएशन के ऊपर मेरी स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट ना हो? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आपके सामने कोई गलती करे और आप बिल्कुल, ऐसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है? सोचो, क्या ये हो सकता है? किस किस ने यहां आने से पहले पिछले एक हफ्ते में एक बार गुस्सा किया था? अच्छा, आईज क्लोज करके उसको सामने लेकर आओ। क्या सीन हुआ था, कौन था सामने, उनकी गलती क्या थी, सब कुछ को रिकैप कर दो एक बार। जस्ट रीप्ले दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। ये क्या किया था उन्होंने उस दिन? हो सकता है बहुत बड़ी गलती थी, हो सकता है सर्जरी के टाइम में क्राइसिस क्रिएट कर दिया उन्होंने, इतनी भी बड़ी गलती हो सकती है? गलती तो बहुत बड़ी थी। उनको सामने लेकर आइए, सिचुएशन को लेकर आइए, उनकी गलती को लेकर आइए, पूरे सीन को रिकैप कीजिए और फिर अटेंशन अपने ऊपर लेकर आइए। और फिर देखिए कि मैंने कैसा फील किया उस समय, मेरी कौन सी थॉट्स चली थी, फिर मैंने कैसे बात किया, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मेरी वोकैबुलरी क्या थी, शब्द कैसे थे, मेरी टोन क्या थी, मेरी आवाज का वॉल्यूम किधर था, ये सब को देखो। अभी देखेंगे ना साक्षी होकर तो चेंज करना बहुत इजी है। अच्छा, अभी सेम सिचुएशन को रखिए, अपने आप को उसमें रखिए और जस्ट एक नया प्ले कीजिए कि सिचुएशन सेम, आई चेंज्ड, हाउ कुड आई डू इट डिफरेंट वे, एक अलग तरह से उस सीन को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे उसको विजुअलाइज कीजिए। हर एक ने करना ये, क्योंकि जो आप अभी विजुअलाइज करेंगे ना वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। इट इज अ कोडिंग हो रही है ये, वो ऐसा करेंगे, हो सकता है वेडनेसडे को जब आप वापस जाओ सेम गलती सामने आएंगे, मैं आत्मा एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करूंगी। और अपने आप को अभी करते हुए देखिए, ओके वापस आइए। किस किस ने देखा कि एक अलग तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है? एवरीबडी, क्या चेंज दिखाई दिया? एनीबडी फेल्स कि अलग तरह से रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है? नहीं। क्या चेंज दिखाई दिया आपको आपके रिस्पॉन्स में? क्या चेंज दिखाई दिया? व्हाट वाज डिफरेंट? क्या आपको अपने रिस्पॉन्स में डिफरेंट दिखाई दिया? कूल थे, हाँ कूल थे, अच्छा और क्या थे, कैसे थे? एनीबडी, क्या रिस्पॉन्स डिफरेंट दिखाई दिया? हाँ जी, पॉजिटिव तरह से बात की, ओके। और कुछ डिफरेंट? हाँ जी, संयम से बात की, वेरी गुड। अब हाँ जी, उसके उसको एक्सेप्ट करके फिर उससे बात की, ओके। आपको लगता है जो अभी दिखा ये प्रैक्टिकल में हो सकता है क्या? ये प्रैक्टिकल में हो सकता है? ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हमने अभी साक्षी होकर डिटैच्ड होकर ये देखा कि उसकी तो गलती थी लेकिन मेरा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है? मेरा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है? मेरी है। लेकिन उस दिन जब मैंने रिएक्ट किया था उस दिन मेरी प्रोग्रामिंग ये थी, गलती उन्होंने ऐसी की तो ऑब्वियसली। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो हमें राजयोग देता है वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। सिचुएशन से मेरी स्टेट ऑफ माइंड सेपरेट हो गई है। ऐसे अब सिचुएशन तो है जो है, लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड का मालिक कौन बन गया? सो राजयोग हमें अपने मन का मालिक बनाता है। मेजॉरिटी बीमारियां इसीलिए हैं क्योंकि हम मन के गुलाम बने हुए हैं, और जब मन के गुलाम बनते हैं तो सिचुएशन के भी गुलाम बनते हैं, जब सिचुएशन के गुलाम बनते हैं तो लोगों के व्यवहार के भी गुलाम बन जाते हैं। कोई एक वर्ड बोल दे और हम ऐसे हो जाते हैं, कोई एक वर्ड बोल दे तो हम ऊपर भी दूसरों के शब्दों से जाते हैं और नीचे भी दूसरों के शब्दों से जाते हैं। मतलब हमारे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में गया? तो राजयोग मतलब रिमोट कंट्रोल बैक। बैक 3 दिन आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप यहां से वापस जाएंगे ये आपकी प्रोग्रामिंग में फिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जाने के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। ये वो हेल्थ है जैसे कि बॉडी की हेल्थ धीरे धीरे बिल्डअप होती है, सोल की हेल्थ भी धीरे धीरे बिल्डअप होती है। लेकिन चेंज ये है कि जब आप वापस जाएंगे और अगर आपने गुस्सा किया तो आप ये नहीं कहेंगे उनकी वजह से, आप क्या कहेंगे? किसकी वजह से? उंगली किसके पास जाएगी? ये गुस्सा किसकी वजह से? यहां नहीं हाथ रखना, यहां रखना ताकि बार बार याद आएगा। यहां होता है, यहां कुछ नहीं होता, यहां इसका इफेक्ट आता है, जो यहां होता है वो उसका इफेक्ट यहां आता है, यहां कुछ नहीं हो रहा। गुस्सा किसकी वजह से? चिंता किसकी वजह से? दुख किसकी वजह से? वेरी गुड। खुशी किसकी वजह से? सारा पावर हमारे पास। अभी तक कैसे जी रहे थे? दुख भी उनकी वजह से, खुशी भी उनकी वजह से, परेशानी भी उनकी वजह से, अच्छा सब कुछ बाहर। टोटल इमोशनल डिपेंडेंस, टोटल स्वराज्य। स्वराज्य किस पर राज्य? किस पर राज्य? अब जैसे ही आप ये करते जाएंगे सेकेंड इक्वेशन ये याद आएगी, अगर ये मेरी चॉइस है तो हमें कौन सा रिस्पॉन्स चूज करना चाहिए? जो राइट हैंड वाला है। इसलिए राइट हैंड वाली लिस्ट हमने पहले ही बना ली। सबसे पहली चीज क्रिएट कौन कर रहा है? मैं। दूसरा चॉइस किसके पास है? मेरे पास। तीसरा चूज किसको करना है? जो राइट हैंड पे रहता है। और जब हम राइट हैंड वाली इमोशंस को चूज करना शुरू करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन धीरे धीरे कौन सी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाएगी? यस, आप सब फरिश्ता बनना चाहते हैं? आप सब फरिश्ते बनना चाहते हैं? यस, आपको तो वैसे ही लोग फरिश्ता कहते हैं, कहते वो ये हमारे जीवन में फरिश्ते बनकर आए हैं। फरिश्ता मतलब जो किसी को सुख देता है। अब आप उनको सुख कैसे दे रहे हैं? उनके शरीर की बीमारी को ठीक करके। लेकिन जब यहां से वापस जाएंगे तो आप उनको डबल सुख देंगे। शरीर की बीमारी को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, लेकिन खुद सुखी रहकर सारा दिन क्या रेडिएट करेंगे? हैप्पीनेस और पीस रेडिएट करेंगे। जब हम किसी को मिलते हैं, उनकी एनर्जी और हमारी एनर्जी का एक कम्युनिकेशन होता है। हमें लगता है बात करना, व्यवहार करना कम्युनिकेशन है, फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस उस पर बात करता है जो सारा दिन दिखाई देता है, स्पिरिचुअलिटी उस पर फोकस करती है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन सारा दिन महसूस होता है। ये आपकी कुर्सी है, ये आपकी टेबल है, एंड आपके अक्रॉस आपका पेशेंट आकर बैठता है, पेशेंट के साथ परिवार के एक दो लोग आकर बैठते हैं और आप उसकी शरीर की बीमारी को चेक करते हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। 10 मिनट 5 मिनट भी अगर आप किसी को मिलते हैं तो आपकी जो सबसे पहली कम्युनिकेशन है वो किसकी और किसकी है? वो किसकी और किसकी है? वो है मेरी एनर्जी की उनकी एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन। हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है जिसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप यहां आए, आपको यहां की वाइब्रेशन अच्छी लग रही है, राइट? हर जगह की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे घर की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे हॉस्पिटल की एक वाइब्रेशन होती है, हमारी एक वाइब्रेशन है। ड्रॉ करो इधर एक सर्कल। जब हम मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, उनके पीछे एक व्हाइट कलर का सर्कल दिखाया जाता है। धर्म स्थापक भी प्रॉफिट्स की फोटो देखते हैं, उनके पीछे एक व्हाइट कलर का सर्कल दिखाया जाता है। मतलब उनका आभा मंडल कौन से कलर का है? व्हाइट। मतलब ईक्यू का है? ईक्यू का है? हाँ। हमें अपना कौन सा बनाना है? कौन से कलर का बनाना है हमने? व्हाइट। और व्हाइट कैसे बनेगा? जब सारे दाग निकल जाएंगे। और जिएंगे कैसे? बेदाग। अब जब दो लोग मिलते हैं तो पहले किसका और किसका कम्युनिकेशन हो रहा है? मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी फील्ड का। अगर आपने अपनी एनर्जी फील्ड का ध्यान नहीं रखा तो हर पेशेंट इंटरैक्शन में आपके पास वहां की एनर्जी आ रही है। वो लोग किस मन की स्थिति में आए हैं? वो लोग किस मन की स्थिति में आए हैं? दर्द में आए हैं, दुख में आए हैं, चिंता में आए हैं, परेशान आए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है क्या होना है आगे, क्या बहुत कंफ्यूज स्थिति में वो आए हैं और हमने बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए हमने उनसे बात कर ली। फिर 5-10 मिनट के बाद वो बाहर गए, नेक्स्ट आए। 5-7 मिनट के बाद वो बाहर गए, नेक्स्ट आए, फिर गए, नेक्स्ट आए। और हम सुबह से रात तक हमने कहा आज मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे लेकिन मैंने ये नहीं याद रखा मैंने इतने सारे पेशेंट्स की एनर्जी को क्या कर लिया। और शाम को ये सारी एनर्जी कहां जाएगी? शाम को ये सारी एनर्जी कहां जाएगी? कहां जा रही है? हमारे घर जा रही है। जब कोविड था सारे घर पर बैठे थे, आप बाहर थे, सबका ध्यान रख रहे थे, निडर होकर निस्वार्थ होकर कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा डर हमेशा रहता था कि मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, ये मेरे से घर चला जाएगा शाम को। ये रहता था कि नहीं? कंसर्न कि इन्फेक्शन मेरे से घर नहीं जानी चाहिए क्योंकि घर पर बड़े हैं, घर पर बच्चे हैं, ये इन्फेक्शन मेरे से घर नहीं जानी चाहिए। वॉज दैट अ कंसर्न? यस एवरीबडी, वॉज दैट अ कंसर्न? सेम कंसर्न वी हैव टू कीप फॉर इमोशनल इन्फेक्शन कि मुझसे ये सब लोगों का दर्द शाम को मेरे साथ घर नहीं जाना चाहिए। रेडी है करने के लिए ये प्रोटेक्शन? रेडी है? आप अग्री करते हैं कि जो लोग आपसे मिल रहे हैं वो बहुत हाई इमोशनल हेल्थ पर नहीं है, राइट? पहली बात तो परफेक्ट इमोशनल हेल्थ पर होते तो शरीर बीमारी ना होता, तो हम सब एवरेज पे चल रहे हैं। लेकिन जब मुझे बीमारी हो जाती है तो मेरी एवरेज भी कहां चली जाती है, थोड़ी सी। और फिर एक नहीं है ना, एक के साथ एक दो लोग और भी आ रहे हैं, सब परेशान है। एंड आप एक को मिलकर वो बाहर जा रहे हैं, आप अपने आप को साफ भी नहीं कर रहे, अगले से मिल रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे आपका ऑरा क्या हो गया, आपका ऑरा क्या हो गया, बाय द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी में बहुत हैवीनेस आ जाती है। और इसलिए आपने कहना शुरू किया डॉक्टर मतलब स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, डॉक्टर मतलब दुआओं से पलते हैं, लेकिन डॉक्टर मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे फिजिकल इन्फेक्शन कैच नहीं की, इमोशनल इन्फेक्शन भी कैच नहीं करनी। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि लोअर वाइब्रेशन मुझे नहीं हिट करे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आपने आंसर देना है, बताइए। इनकी लोअर एनर्जी मुझ पर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? लोअर एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है अपने आप को, अपनी को कहां रखकर? अब हाथ रखिए, सपोज आपका पेशेंट 30 पर है या 40 पर है वाइब्रेशन में और हम 50 पर हैं, लेट्स से एवरेज नॉर्मल, कुछ दुख परेशानी कुछ नहीं है, मैं 50 पर हूं, पेशेंट 30 पर आया 40 पर आया, तो हमारी एनर्जी फील बहुत नजदीक है एक दूसरे के, और इसीलिए उनकी वाइब्रेशन का असर मुझ पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो 3 है, मैं 1 हूं, दिन में इतने सारे हैं, हॉस्पिटल का वाइब्रेशन भी थोड़ा नीचे ही होता है क्योंकि दर्द है, दुख है, डेथ है, क्राइसिस है, इट्स डाउन। सो एक्चुअली द प्रेशर सिचुएशन का नहीं है, प्रेशर एनवायरमेंट का है, क्योंकि हॉस्पिटल का वाइब्रेशन थोड़ा सा हम नीचे है, हर पेशेंट जो आ रहा है उसका वाइब्रेशन थोड़ा नीचे है, मैं अपना एवरेज पे चल रही हूं, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल लोअर वाइब्रेशन पे चलने से धीरे धीरे मेरा वाइब्रेशन किधर मूव होना शुरू हो जाता है। 50 था लेकिन मैंने उसको ऊपर करने में कुछ नहीं रोज किया, तो धीरे धीरे वो 50 से किस तरफ जाना शुरू किया, मेरी गलती की वजह से नहीं, लेकिन कारण सिर्फ ये कि एनवायरमेंट कैसा था। जैसे आप कल आए, एक ही दिन आया, एक ही दिन हुआ, आपको लग रहा है आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी ऊपर गई है कल से? किसको फील हो रहा है ऐसा कि कल से थोड़ी ऊपर गई? क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हायर वाइब्रेशन में आए, एक दिन में अपनी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि जब हम लोअर में जाते हैं कि हमारी लोअर हो रही है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है रोज का। इसलिए बिकॉज आर प्लेस इज अ प्लेस ऑफ पेन, जहां हम काम करते हैं सारा दिन, आप उसके साथ इक्विप्ड हैं, आपका स्टाफ भी इक्विप्ड है, बट एक एक पेशेंट के लिए तो एक एक वर्ड एक क्राइसिस होता है उसके माइंड के अंदर, तो इसलिए उस वाइब्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल में ही वो लोअर एनर्जी है। तो मुझे अपनी एनर्जी को कहां रखना पड़ेगा? तो अगर 50 पे रखा ना, तो धीरे धीरे नीचे खिंच जाएंगे, इसलिए 10 years 20 years उसके बाद स्ट्रेस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए खुद को कहां रखना पड़ेगा, कितना ऊपर? अब जैसे ही अपने आप को थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्या उनकी एनर्जी हम पर असर करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एनर्जी कभी लोअर टू हायर नहीं जा सकती है। लेकिन एनर्जी कैसे फ्लो होती है? हायर टू लोअर। तो उनकी मुझ पर तो असर नहीं करेगी, लेकिन मेरी, जैसे यहां आकर एक दिन में आपकी एनर्जी ऊपर उठ गई, आपसे मिलकर आपके हर पेशेंट की एनर्जी उठनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यू विल बी दैट हायर एनर्जी। आप एक चलता फिरता पावर हाउस होंगे, आपसे मिलकर ही सामने वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अभी बॉडी का इलाज होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपसे मिलकर ही वाइब्रेशन कौन सी बनेगी, और जैसे ही वो वाइब्रेशन मिलेगी, सामने वाले एनर्जी उठ जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन? डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन? कौन चाहता है कि मेरे से मिलकर लोगों की एनर्जी ऊपर उठ जाए? जैसे ही आपसे मिलकर उनकी एनर्जी ऊपर उठेगी, तो उनकी शरीर की हीलिंग बेटर होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? और जैसे उनकी शरीर की हीलिंग बेटर होगी, तो आपको नहीं लगता जिस सेवा भाव से आप चले थे वो आपका जल्दी अचीव हो जाएगा? फिर इसमें दो चीजें हो जाएंगी, एक हमारी प्रोटेक्शन, दूसरा उनकी हीलिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा शाम को कौन सी एनर्जी घर लेकर जाएंगे, शाम को कौन सी एनर्जी घर लेकर जाएंगे, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी घर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहला होमवर्क लिख लो, मेरी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए हर रोज। ये एक्चुअली आपको सिखाया जाना चाहिए था फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस। दिस हैज टू बी टॉट देयर कि यू आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग बॉडी, यू आर हीलिंग माइंड्स, एंड टू हील माइंड्स यू विल ऑलवेज हैव टू बी अ पावरफुल माइंड। यू कैन नॉट बी अ स्ट्रेस्ड माइंड। स्ट्रेस्ड माइंड बॉडी की ट्रीटमेंट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिटेड है कैसे इलाज करना है। आपको आधी रात को भी फोन आता है, आप नींद में जाके सर्जरी करके आ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप शरीर का इलाज कर सकते हैं मन को, बट वो नहीं सिखाया किसी ने हमें। और क्योंकि नहीं सिखाया तो हम ऊपर तो गए नहीं, लेकिन वातावरण की वजह से हम धीरे धीरे नीचे आते गए, उसका असर उन पर आता है। तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हमारी वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए, ऊपर। तो आज से अपने लिए एक संकल्प लिख लो, आई एम एन एंजल, मैं फरिश्ता हूं। लिखिए, कौन हूं मैं? मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं फरिश्ता हूं, डॉक्टर तो मेरी सेवा है, मैं फरिश्ता हूं। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं बोलेंगे तो बोलेंगे डॉक्टर हूं तो स्ट्रेस तो होता ही है, फरिश्ता हूं तो, फरिश्ता हूं तो, फरिश्ता हूं तो नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर तो हमारी सेवा है, वो तो यहां से करनी है, यहां से मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं बोलिए, बनने वाला नहीं हूं, मैं हूं। अब आज सारा दिन याद रखेंगे तो थोड़ा सा भी थॉट्स में भी दाग आएगा तो जल्दी से रुक के उसको क्या कर देना। आपको लगता है कि हम एक वाइट ऑरा के साथ सारा दिन रह सकते हैं? रह सकते हैं? जैसे ये वाइट ड्रेस है, अगर हम सुबह वाइट ड्रेस पहने, सारा दिन काम करें हॉस्पिटल में, सब कुछ करें, रात तक घर आए, क्या हम अपनी ड्रेस को वाइट रख सकते हैं? यस और नो? वाइट ड्रेस पहनकर सारा दिन काम करके रात को वाइट ड्रेस को बेदाग करके घर ला सकते हैं? अच्छा, सपोज एक दिन के लिए करना हो कल, क्या आप सबको कल एक व्हाइट ड्रेस मिले और आपको कहा जाए आप सुबह पहनोगे रात तक ये व्हाइट रहनी चाहिए, यहां कर सकते हो एक दिन के लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सारा दिन सब कुछ कर रहे हैं, कुर्सी पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डाइनिंग हॉल में कुर्सी, अलग 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 जगह जाएंगे, लेकिन व्हाइट को रात को व्हाइट लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ व्हाट इज द वर्ड? अटेंशन, ध्यान। हम सिर्फ अपने वाइट का ध्यान रखेंगे, इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। ध्यान मतलब सिंपल, टेक केयर, ध्यान रखो। हम कहते हैं ध्यान करो, परमात्मा कहते हैं बस ध्यान रखो अपना सिर्फ सारा दिन। अब कैसे ध्यान रखेंगे? चलेंगे फिरेंगे, कहीं कुछ लगेगा, अगर लग भी गया तो तुरंत क्या करेंगे? साफ करें। सेम वी आर गोइंग टू डू हियर, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कुछ बातें होंगी, कोई कुछ कहेगा, मेरी एक थॉट चलेगी, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, तो मेरा क्या लगना शुरू हो चुका है? दाग। ध्यान रखना मतलब तुरंत क्या करेंगे उस दाग को? तुरंत क्या करेंगे? तुरंत रुक के उस दाग को क्या करना है? चेंज करना है। अब आप लंच के बाद रूम में जाएंगे, आप घर पे फोन करेंगे, आप हॉस्पिटल में फोन करते होंगे, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। आज से आपका बात करने का तरीका डिफरेंट होगा। किसकी तरह बात करेंगे? किसकी तरह बात करेंगे? मैं कौन हूं? भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसको बार बार याद करना है। मैं कौन हूं? सामने वाला बोलेगा आपको पता है ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, आप कैसे बात करेंगे? आप कैसे बात करेंगे? आप बोले ऐसे हुआ ना, कोई बात नहीं, आप ना ऐसे करो, सब परफेक्ट है। वो कहेंगे आपको क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं भाई, जहां पहुंचे हैं वहां का रंग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यहां हम क्यों आए हैं तीन दिन के लिए? हम यही कॉन्फ्रेंस आपके शहर में कर सकते हैं, लेकिन यहां हम इसलिए आए हैं क्योंकि तीन दिन में वो वाइब्रेशन का हम पर इतना असर पड़ जाए कि इट शुड नॉट बी अ 3-day प्रोग्राम, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ माय बीइंग एंड लिविंग, मेरा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो हर फोन कॉल से पहले याद रखना कि फोन कॉल के एंड तक बेदाग रहना है, राइट? बेदाग रहना है, सिचुएशन को फेस करना है, उसमें जो क्राइसिस आया उसको सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन देना है, आंसर देना है, सामने वाले की बात भी सुननी है, दाग नहीं लगना चाहिए। कर सकते हैं आज? कर सकते हैं? 4:30 हमने फिर से मिलना है, आप 4:30 तक बेदाग रह सकते हैं? कौन कौन 4:30 तक बेदाग रहेगा? वेरी गुड। चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर लगा ना तो नो प्रॉब्लम, अगर लगा तो ओनली थिंग टू डू इज इमीडिएटली, मतलब मैंने किसी के लिए कोई थॉट क्रिएट कर दी, भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, इमीडिएटली स्टॉप, चेक, चेंज, संस्कार है, कोई बात नहीं, ब्यूटिफुल सोल। दाग कैसे लगता है? विद अ थॉट। और दाग मिटता कैसे है? विद अ थॉट। ठीक है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, थॉट थॉट को काटती है। अगर मेरे माइंड ने कहा ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, अब उसको कट करो, दाग को चेंज करो, बोलो हो गया ना, इंपॉर्टेंट है अब क्या करना है। प्रॉब्लम का डिस्कशन नहीं करते कभी भी, आग कैसे लगी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आपके सामने कोई आया आप ये नहीं पूछते गिरा कैसे, चोट, आप बोलते चलो जल्दी पहले सॉल्व करते हैं उसको। सिमिलरली सब कुछ ना आपकी प्रैक्टिस के अंदर, हीलिंग के सारे प्रैक्टिसेस फिटेड हैं, सिर्फ जो कुछ आप फिजिकली करते हो उस सबको आपको यहां भी करना शुरू करना है। लोग घंटों घंटों बात करते रहते हैं, बट हुआ कैसे, ऐसा किया किसने, बट उसने किया, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। आज से प्रायोरिटी वो रखनी है कि ये बैटरी क्या नहीं होनी चाहिए। तो जब आप फोन कॉल करेंगे तो ध्यान ये भी रखना कि गॉसिप नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी फोन पे। गॉसिप हुई तो बहुत सारे दाग लग जाते हैं, गॉसिप हुई ना तो अपने दाग नहीं लगते, दूसरों के हाथ के दाग भी लग जाते हैं, क्योंकि हमने उनकी नेगेटिविटी डिस्कस की तो उसके भी दाग लग जाते हैं। डॉक्टर मतलब हमेशा इधर होना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना है। थोड़े से संकल्प हम लिखते हैं अभी, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 3 दिन अभी यहां है, हम यहां से करना शुरू करेंगे। स्पिरिचुअल लॉ है कि संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होता है? संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब जो हम सोचते हैं बोलते हैं, और बहुत बार सोचते बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में हमारे भाग्य में आ जाता है। अगर आप कहेंगे आई एम स्ट्रेस्ड, तो आप ये समझ लो निश्चित कि आज से आपका स्ट्रेस लेवल क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। संकल्प से सिद्धि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके शब्द, आपकी वोकैबुलरी सिर्फ आपका भाग्य नहीं बनाती, आपके शब्द दूसरों की सोच बनाते हैं और उनकी सोच उनका भाग्य बनाते हैं। जैसे ही आप संकल्प से सिद्धि करना सीख लेंगे, आप अगर एक पेशेंट को कुछ क्राइसिस की न्यूज भी दे रहे हैं ना, आपका देने की वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी, एंड जैसे ही वोकैबुलरी चेंज होगी उनका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो अभी वास्तविकता है, उसको नहीं बोलना है, जो आप देखना चाहते हैं उसको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आई, मेरा शरीर बीमार है, ये एक वास्तविकता है, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज रियल। लेकिन आपको भी पता है कि जो पेशेंट बहुत बार ये उच्चारण करता है, मैं बीमार हूं, दर्द बहुत हो रहा है, उसका दर्द क्या होता जाएगा, आपको लगता है ऐसा होता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बीमारी तो उतनी है जितनी थी, बढ़ा क्यों? संकल्प से सिद्धि होती है, दैट इज द लॉ। तो अगर उसने कहा मैं बीमार हूं, आपने कहा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, कहते डॉक्टर साहब आपको क्या पता कितना है, मैं बोल रहा हूं आपको बहुत दर्द है, तो दर्द इतना था, लेकिन बार बार बोलने से क्या हुआ, तो इधर रखो इसको ऐसे रखो 50, एक और इक्वेशन सेट करनी है। मेरी प्रॉब्लम है 50 पर है, बार 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 उसका उच्चारण करके वो क्या होने लगती है, धीरे 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 बढ़ने लगती है। दिस इज संकल्प से सिद्धि। अब अगर वो 50 पर है और मैं अपने संकल्पों से उसको बढ़ा सकती हूँ तो मैं उसको अपने संकल्पों से घटा भी सकती हूँ। तो जो पेशेंट आपके सामने कहता है या खुद मन में ये सोचता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो दो दिन में उठ के चल के भागना शुरू करना है, इवन अगर मेडिकल साइंस उसको कहती है नहीं नहीं अभी एक हफ्ता लगेगा आपको उठने में, आप देखो आपकी मेडिकल साइंस क्यों हमेशा राइट प्रूव नहीं होती है। आपको लगता है ना हमेशा राइट प्रूव नहीं होती है, किसी के लिए आपको लगता है एक हफ्ता लगेगा वो दो हफ्ते लगा देते हैं ठीक होने में, किसी के लिए आपको लगता है एक हफ्ता लगेगा वो चार दिन में ठीक हो जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन राइट क्यों नहीं प्रूव होती है, क्योंकि आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं ट्रीटमेंट मेडिकल दवाई, दवाई के इफेक्ट्स उसके आधार पर, और अब तक जितने लोगों ने वो ट्रीटमेंट ली है उनको कितना टाइम लगा था, दैट इज ओनली डेटा। उस हिसाब से आप कहते हैं मोर और लेस हर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन हर एक का माइंड अलग अलग होता है। तो क्या पेशेंट के मन का रोल है हीलिंग में, आपको क्या लगता है आपका कितना रोल है और उनका कितना रोल है, ये भी एक वोकैबुलरी चेंज करना जाने के बाद। कभी नहीं किसी को कहना हम आपको ठीक कर देंगे, फिर वो आपके पास आते हैं कहते हैं मैं तो ठीक नहीं हुआ, आपने कुछ तो गलत किया होगा, फिर कहते हैं मेरा पड़ोसी तो उस डॉक्टर के पास गया था वो जल्दी ठीक हो गया, मतलब वो डॉक्टर अच्छा है, बिकॉज वी सेड हम आपको ठीक करते हैं, हम आपको ठीक नहीं करते हैं, 50% हम 50% आपका मन। उनको उनकी जिम्मेवारी बताइए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी पावर बताइए। तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी कितनी पावर है, उनकी कितनी पावर है। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एक वाइब्रेशन है, वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी हमारे बॉडी पर जाती है। आप बिलीव करते हैं यहाँ की वाइब्रेशंस बॉडी पर जा रही हैं? तो अगर मैं बीमार हूँ और मैंने यहाँ से वाइब्रेशन भेजा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, दर्द है, दर्द है, मैंने वाइब्रेशन भेजा इस दवाई का ये साइड इफेक्ट है, तो वो सारे साइड इफेक्ट क्या होने लग जाते हैं। और जब तक मुझे नहीं पता था, तो जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था तो लोगों को साइड इफेक्ट नहीं पता थे, तो साइड इफेक्ट कम होते होंगे, और अब वो आपके पास आने से पहले, दवाई मुंह में डालने से पहले क्या कर लेते हैं, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन माइंड एंड इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी, ये है संकल्प से सिद्धि। तो अगर मैंने कहा इस दवाई के ये साइड इफेक्ट है, ये है, ये तो पक्का है, ये तो मुझे होगा ही, तो होगा ही, और किसने उसको मैनिफेस्ट किया, ये मैंने मैनिफेस्ट किया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस वोकैबुलरी। उसको फिर हम अगले दो दिन में बार बार देखेंगे कि कैसे मुझे अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है। अब अगर 50 पर हो बीमारी दर्द और मैं बोलूं मेरे को बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो ये 50 से क्या हो गया 55, 55 से 45 तक लाने के लिए क्या बोलना है, ये तो पता है क्या बोलना है, यहां लाने के लिए क्या बोलना है। अभी मैंने कहा मुझे बहुत दर्द है और बहुत बार बोला, तो 50 से 60 चला गया, मुझे 50 से 40 लेकर आना है, तो मैं क्या बोलूं, हां जी मुझे कम दर्द है, हाउ स्वीट, नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम दर्द वर्ड को हटाते हैं, जो नेगेटिव वर्ड है ना, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा मुझे कम दर्द है, बट स्टिल द वर्ड दर्द इज रेडिएटिंग टू माई बॉडी। सो वो संकल्प में जो हमें बार बार रिपीट करना है, कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मेरे अंदर 50% गुस्सा है, मुझे 40 पर लाना है, तो मुझे ये नहीं कहना मुझे गुस्सा कम करना है, क्योंकि बार बार मैं कौन से वर्ड का उच्चारण करूंगी फिर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल। अब उसमें गुस्सा वर्ड नहीं है, उसमें कौन सा वाला वर्ड है, पीस का वर्ड है। अब बार बार उसका उच्चारण करेंगे, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, तो 50 से स्ट्रेस कहां जाना शुरू हो जाएगा, 40, वापस जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे 30, 20, फिनिश्ड. इतना इजी है, इतना इजी है प्रॉब्लम को बड़ा करना, और उतना ही इजी है, उससे भी ज्यादा इजी है प्रॉब्लम को छोटा करना. तो बताइए, पेन को 50 से 40 पे लाने के लिए मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी है? मेरे घुटने में बहुत दर्द है, अब बताइए. चलो स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, चला भी नहीं जाता, सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जाती, बहुत दर्द है. डॉक्टर साहब पिछली बार जितना दर्द था ना उससे भी ज्यादा हो गया, अब क्या करें? अब संकल्प बताइए. बहुत इजी है, मेरे घुटने में दर्द है, संकल्प बताइए. आई एम स्ट्रांग, वो तो आई एम स्ट्रांग, मेरे घुटने का क्या होगा इसका बताओ. इसके लिए भी स्पेसिफिक संकल्प डालना. ये यू विल क्रिएट मैजिक आफ्टर यू गो बैक इफ यू टीच योर पीपल हाउ टू डू दिस. मेरा घुटना बेटर है, वेरी गुड. अब आप थोड़े से बेटर हो गए, अब इसको और हायर लेकर जाओ. सी, संकल्प को क्या करो, हाइएस्ट वाइब्रेशन पर लेकर जाओ. अगर मैंने कहा घुटने में दर्द है, लोअर एनर्जी, फिर मैंने कहा घुटने में दर्द कम है, थोड़ा सा बेटर, फिर मैंने कहा घुटना मेरा बेटर है, थोड़ा सा और बेटर, मेरा घुटना ठीक है, वेरी गुड, और बेटर, मेरा घुटना नॉर्मल है, और बेटर, मेरा घुटना परफेक्ट है. दैट्स इट. So this is how our thought process can go higher and higher and higher and higher. हमारी भाषा चेंज हो जाएगी. चार दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, एक भैया ऐसे ही आके मिले, कहते आपको बताया मैं 10 साल से बीपी की दवाई ले रहा था, मेरी खत्म हो गई. मैं कहा क्या किया? कहता एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें आपने 5 संकल्प दिए, उसमें आपने बोला माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी, माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल. मैंने तो बोलना शुरू कर दिया. मैं कहा ऐसे ठीक भी हो गया मतलब इतनी जल्दी? तो कहता है हाँ. मैं कहा कितने महीने में? कहता है 3 महीने में. मैं कहा 3 महीने में थोड़ी ठीक हो गया होगा 10 साल का? कहता है हो गया. कहता और मैं लो फील करने लगा, वो डॉक्टर ने कहा मुझे कि आपका तो बीपी डाउन जा रहा है, आप दवाई लेना पहले कम करो, और फिर बंद हो गई. तो मैंने कहा आपने कितनी बार बोला उसको जो 3 महीने में इतनी जल्दी ठीक हो गया? कहता मैं तो बोलता ही गया क्योंकि मुझे बहुत फायदा हो रहा था उससे. कहते और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि मेरे रिश्ते ठीक होने लगे ऑफिस के अंदर, मेरा गुस्सा कम होने लगा क्योंकि मैंने कहा आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल. कहते वो तो ना मेरे गाने की तरह पीछे सिस्टम में ही फिट हो गया, वो चल ही रहे होते हैं वो वर्ड्स. एंड आई लुक्ड एट हिम, आई सेड इन 3 मंथ्स यू वर एबल टू डू इट? ही सेड यस, इन 3 मंथ्स आई वॉज एबल टू डू इट. दैट इज द पावर ऑफ द माइंड ऑन द बॉडी, वी हैव टू यूज इट. अगर हम पावर ऑफ द माइंड को पावर ऑफ मेडिसिन के साथ कंबाइन करेंगे ना, हम मिरेकल्स हर रोज क्रिएट करना शुरू कर देंगे. अभी हम सिर्फ पावर ऑफ मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, हमें पावर ऑफ मेडिसिन प्लस पावर ऑफ माइंड. जब आप ये कहते हैं कि मोस्ट डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मतलब कहां से शुरू हो रही है? यहां से. अगर बीमारी यहां से शुरू हो रही है तो आप इलाज सिर्फ यहां करेंगे? इलाज भी कहां से शुरू करना पड़ेगा? इसीलिए इलाज इनकम्प्लीट है, क्योंकि बीमारी मन से शुरू हो रही है, इलाज सिर्फ शरीर पे हो रहा है. अगर इलाज भी मन से भी शुरू हो और दवाई से भी हो तो मिरेकल्स क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? तो भारत देश से तो हमें सबसे ज्यादा मेडिकल मिरेकल्स क्रिएट करके भेजने चाहिए. विदेश यहाँ के मिरेकल्स को स्टडी करे और सीखे कि मेडिसिन के साथ अगर आप माइंड पावर को यूज करो तो वी विल क्रिएट सो मेनी मिरेकल्स. करेंगे नहीं करेंगे? राइट. तो हीलिंग में किस किस के माइंड का असर पड़ता है? हीलिंग में किस किस के माइंड का असर पड़ता है? पेशेंट के माइंड का असर पड़ता है 1, पेशेंट की फैमिली के माइंड का असर पड़ता है 2, और कोई असर पड़ता है? और किसके मन का असर पड़ता है? उंगली रखना तरह उधर. हाँ, डॉक्टर के माइंड का असर पड़ता है 3, डॉक्टर के साथ जो नर्सेज हैं उनके माइंड का असर पड़ता है 4, एंड उस हॉस्पिटल में सारा जो स्टाफ है उनके माइंड का असर पड़ता है. इसीलिए हम अगर गुस्सा करते हैं ना तो हम तो 1 मिनट में भूल जाते हैं, पर वो जो सारा दिन उस पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं उनकी मन की स्थिति कहाँ चली जाती है? नीचे जाती है. और उनकी मन की स्थिति उस पेशेंट की हीलिंग को स्लो डाउन करेगी. ये हमारा कर्म बनेगा. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे हॉस्पिटल का वाइब्रेशन कैसा रहना चाहिए, हमेशा हमेशा ऊपर। हाई क्राइसिस है, हर एक काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, कभी कभी कोई गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती थी, जानबूझ के किया हुआ पाप नहीं था, ठीक है, वो गलती थी। और गलती को ठीक करो, लेकिन गलती को ठीक करते हुए सामने वाले को वो गलत है ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि उसको गलत बोल दिया तो उसकी स्थिति कहां चली जाती है, डाउन। एक गलती तो हुई, लेकिन जब स्थिति डाउन जाएगी तो और गलतियां होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो प्रायोरिटी इज टू गेट एवरीथिंग परफेक्ट हियर, लेकिन बिफोर दैट गेट एवरीथिंग परफेक्ट हियर, देन टुगेदर वी क्रिएट मैजिक, देन टुगेदर वी क्रिएट मैजिक। ठीक है, क्लियर है? तो आज आप लास्ट पेज पे अपने दाग लिखेंगे, फॉर द लास्ट टाइम उनकी लिस्ट बनाएंगे, जस्ट सो दैट वी आर वेरी क्लियर कि ये मेरा नॉर्मल संस्कार नहीं है। फर्स्ट पेज पे आप अपने 7 ओरिजिनल संस्कार लिखेंगे। कौन से थे 7 ओरिजिनल संस्कार? आई एम अ प्योर सोल, पवित्रता। आई एम अ पीसफुल सोल, शांति मेरा संस्कार है। आई एम अ लवफुल सोल, प्यार मेरा संस्कार है। आई एम अ पावरफुल सोल, शक्ति मेरा संस्कार है। आई एम अ नॉलेजफुल सोल, ज्ञान मेरा संस्कार है। आई एम अ हैप्पी सोल, सुख मेरा संस्कार है। एंड आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आनंद मेरा संस्कार है। तो प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, नॉलेज, ब्लिस, 7 संस्कार मेरा ओरिजिनल वाइट है, ओरिजिनल वाइट है। इसमें से सारे हमारे अच्छे संस्कार निकलते हैं, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, कंपैशन, केयर, ये प्राइमरी कलर्स हैं, वो सेकेंडरी कलर्स उसमें से निकलेंगे, लेकिन ये 7 मूल संस्कार हर आत्मा के हैं। फिर जब हम 4:30 बजे नेक्स्ट मिलेंगे तो हम अपने वो 10 संकल्प लिखेंगे और फिर हम अपने रिश्तों में उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें आप करके आएंगे, ठीक है? अपने दाग लिखेंगे, अपने 7 संस्कार लिखेंगे, और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आई एम एन, याद रखना, फोन करोगे घर पे तो बोल देना कि आज से मैं कौन हूं, तो उनको पता होना चाहिए कौन वापस आने वाला है ट्यूजडे को, उनको पहले से बता देना, पता है कौन वापस आने वाला है ट्यूसडे को। बोलेंगे, सोचेंगे तो बनना शुरू करेंगे। हम क्या कहते हैं, मैं तो इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं, तो बस गलतियां ही करते जाते हैं फिर ऐसे बोल के। जो सोचेंगे, जो अभी गीत था ना स्टार्टिंग में, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, ये है संकल्प से सिद्धि। और सेकेंड होमवर्क क्या था, उंगली हमेशा किस पर होनी चाहिए, ऐसा किसकी वजह से, इमोशनल इंडिपेंडेंस, नेवर ब्लेम द सिचुएशन फॉर हाउ यू आर फीलिंग। मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट, मुझ पर, चॉइस मेरी है, EQ 10 है, और कौन से इमोशंस यूज करने हैं, राइट हैंड वाले। आई एम द क्रिएटर, आई हैव द चॉइस एंड आई नो माई राइट चॉइस। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फरिश्ता बनकर। फरिश्ता मतलब आत्मा, प्योर, पावरफुल एंड चारों तरफ वो वाइट लाइट एनर्जी का सर्कल, उसको रोज ड्रॉ करना है। अभी ड्रॉ कीजिए, मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है, मैं फरिश्ता हूं, फ्लॉलेस, प्योर, बेदाग। मेरी हर थॉट मेरी क्रिएशन है। मैं मालिक हूं अपने मन का। पावर हाउस हो, हर एक को मुझसे शांति और शक्ति मिलती है। देखिए अपने आप को हॉस्पिटल में चलता फिरता पावर हाउस, रेडिएटिंग पीस एंड पावर। सबको मुझसे शांति और शक्ति मिलती है क्योंकि मैं फरिश्ता हूं। आज सारा दिन ध्यान रखना है, व्हाइट सर्कल को व्हाइट रखना है, हर थॉट में, हर बोल में, हर कर्म में उसको व्हाइट रखना है। वो है ही व्हाइट, उसको व्हाइट रखना है, ध्यान रखना है। ओम शांति। बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे, एकदम साइलेंस, साइलेंस में रहेंगे। जैसे जैसे अभी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा करेंगे, लेकिन साइलेंस में करेंगे। अच्छा,